ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के गोडली स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट सारा दिन अपनी पढ़ाई के चिंतन में रहता है। लौकिक दुनिया में जब इम्तिहान नज़दीक आता है तो आपने देखा होगा छोटे छोटे गुटके निकलते हैं, गैस पेपर भी निकलते हैं जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दिए होते हैं। कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि वो पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में उन गुटकों में या गैस पेपर्स में जो सवाल होते हैं उनको रट लेते हैं और लिख आते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो वो जो गुटके होते हैं, गैस पेपर होते हैं, उनमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हाथ का निशान होता है, आपने देखा होगा, उंगली से इशारा किया हुआ होता है ऐसे करके, और उसके आगे लिखा हुआ होता है इम्पोर्टेंट, और फिर आगे ये भी लिखा होता है कि ये प्रश्न फलानी यूनिवर्सिटी में आया था, फलाने पेपर में आया था, फलाने में आया था, इसलिए इसके आने की संभावना है। तो ये गॉडली यूनिवर्सिटी है और इसमें भी कई सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिनकी तरफ बाबा बार बार इशारा करता है, और उन सवालों को बाबा ने इस सीजन की मुरलियों में भी दोहराया। बाबा ने तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट हम सब के सामने रखी। एक तो बाबा ने कहा अचानक, दूसरा कहा एवर रेडी, और तीसरा कहा बहुत काल। बाबा ने कहा जो भी होगा अचानक होगा। पहले जब साकार में बाबा थे, साकार की मुरली सुनते हैं तो उसमें बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ है। और अब बाबा कहते हैं अचानक। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन पहले वाले जो बच्चे थे वो बहुत सावधान थे, तो सावधान व्यक्ति के लिए कुछ भी अचानक नहीं होता है, इसलिए उनको बाबा ने नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया। और अब वाले बच्चे थोड़े थोड़े अलबेले हैं, उनको सब कुछ ही अचानक लगता है, नया लगता है, इसलिए बाबा उनको अचानक का पाठ पढ़ा रहा है। वैसे तो जीवन में अचानक कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हम असावधान होते हैं तो हमको अचानक लगता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, चल रहे हो सड़क पे, देख रहे हो दूसरी तरफ, अचानक ठोकर लगती है तो क्या कहेंगे, अरे भाई अचानक ये पत्थर आया और मेरे को ठोकर लग गई। अब वो पत्थर अचानक थोड़े आया था, वो तो बहुत देर से वहाँ था। जब आप दूसरे छोर से चले तब भी पत्थर वहीं था, पर आपको अचानक क्यों लगा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। इसी तरह से कई बार हम दूध उबालते हैं, दूध के पास खड़े रहते हैं, अचानक हमारा ध्यान इधर उधर जाता है और दूध उबल जाता है, हम क्या कहते, अरे भाई अचानक उफान आया, अचानक थोड़े आया, वो तो अपने टाइम पर आया, पर हमको अचानक क्यों लगता है, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर हो गया था। तो जब हमारा ध्यान हट जाता है तो हमें बातें अचानक लगती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जो भी होगा वो पहले से आपको बता करके नहीं होगा कि सावधान हो जाओ, ये कार्य होने वाला है, आप असावधान होंगे बात हो जाएगी, फिर आप कैसे संभालेंगे उसको। लौकिक दुनिया की जो पढ़ाई है उसमें समय का पता होता है कि हमारा पेपर कब होगा, लेकिन सवाल का पता नहीं होता, और बाबा की पढ़ाई में उल्टा है, सवाल का पता है कौन सा सवाल आएगा, लेकिन समय का मालूम नहीं है कि कौन से समय पर सवाल पूछ लिया जाएगा। इसलिए समय के प्रति जागरूकता चाहिए। जो समय के प्रति जागरूक है, जो पहले से ये सोच करके चलता है, कि बीमारी कभी भी आ सकती है, प्रकृति के परिवर्तन कभी भी आ सकते हैं, किसी की देह कभी भी छूट सकती है, धंधे में तेजी मंदी कभी भी आ सकती है, उसके लिए कुछ भी अचानक नहीं है क्योंकि वो तो पहले से मान करके चलता है। तो बाबा ने कहा बच्चे पहले से तैयार रहो, और दूसरी बात बाबा ने कही एवर रेडी। दुनिया की जो आर्मी होती है उसको आप कभी भी देखो, वो हमेशा तैयार रहती है, युद्ध हो या ना हो। उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, या वो खुद भी हर समय तैयार होते हैं। हर रोज अपने साधनों को वो देखते हैं, किसी को जंक तो नहीं लग गया, वो ठीक ठाक चल रहे हैं, उनकी मारने की दौड़ने की शक्ति ठीक है। अगर आप उनसे पूछो कि भाई अभी तो शांति का समय है, युद्ध तो हो नहीं रहा, फिर आप क्यों इन हथियारों के पीछे पड़े हो, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं युद्ध आएगा तो हमको बता करके थोड़े आएगा कि भाई तैयार हो जाओ, अपने शस्त्र तैयार कर लो, मैं आ रहा हूँ। युद्ध तो अचानक आएगा, कभी भी आएगा, इसलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, ये मान करके तैयार रहते हैं कि युद्ध हमारे सामने खड़ा है। तो वो तो जिस्मानी फौज है, और हम बाबा के बच्चे तो रूहानी फौज है। उनके सामने तो एक देश का सवाल होता है, लेकिन हमारे सामने तो सारे विश्व का सवाल है। उनका युद्ध तो स्थूल है, लेकिन हमारा युद्ध तो सूक्ष्म है। उनकी तो एक जन्म की लड़ाई है, लेकिन हमारी तो 63 जन्मों के संस्कारों से लड़ाई है। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा पढ़ता है, कोई उससे पूछता है भाई पढ़ाई की तैयारी हो गई, तो वो कहता है भाई मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट तो मेरे तैयार हैं, पर चौथा अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। ऐसे वो रोज अपना असेसमेंट निकालता है, कितने सब्जेक्ट तैयार हो गए, कितने पाठ तैयार हो गए, कितने बाकी रह गए। तो एवर रेडी का हमारे लिए भी मतलब यही है कि हमारी पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट मालूम है ना कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो एवर रेडी का मतलब है जो इन 4 सब्जेक्ट के सारे पाठों में एक्सपर्ट हो गया हो, ज्ञान में भी फुल, योग में भी फुल, धारणा में भी फुल और सेवा में भी फुल, तब वो कह सकता है मैं एवर रेडी हूँ, मेरे 4 सब्जेक्ट तैयार हैं। अब ज्ञान में फुल होने का मतलब क्या है? जैसे बाबा हमें मिले तो हमने क्या कहा, पाना था जो पा लिया। और इसी तरह से बाबा का ज्ञान मिला तो हमने क्या कहा, जानना था सो जान लिया। हमने सब कुछ जान लिया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया, इसका मतलब ज्ञान के सब्जेक्ट में तो हम फुल हो गए। या अभी कोई बात जानने की बाकी है, या अभी भी जानने की रुचि है, कुछ जानूं नया, कुछ सीखूं, कुछ पढ़ूं, कुछ देखूं। भगवान का ज्ञान सुना माना आदि मध्य अंत की सारी जानकारी मिल गई। लेकिन सवाल ये है कि भगवान का ज्ञान मिला, क्या हमने भगवान के दिल को जान लिया? जाना भगवान के दिल को, भगवान का परिचय मिला, उनके गुण और कर्तव्य जाने, उनके साथ हमारा संबंध क्या है वो भी मालूम पड़ा, लेकिन भगवान के दिल में क्या है, क्या वो हमने जाना? क्या है भगवान के दिल में, कैसे जान सकते हैं भगवान के दिल को? बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी जब अपना दिल प्रकट करता है तो कैसे प्रकट करता है, दिल में क्या है, वो कैसे दूसरे के सामने जाता है? दिल की बातें मुख के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो भगवान के दिल में क्या है, भगवान के मुख से जो निकलता है वही भगवान का दिल है। और भगवान के मुख से रोज क्या निकलता है? भगवान की मुरली निकलती है। तो ये मुरली क्या है? जैसे कोई अपने दिल की बात दूसरे को सुनाता है तो कहता है, भाई मैंने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया, अब आपकी मर्जी है, आप कुछ करो या ना करो, मानो या ना मानो, मैंने तो अपना दिल आपके आगे खोल दिया। तो ऐसे ही बाबा मुरली सुनाती हैं तो हम बच्चों को अपना दिल खोल करके हमारे सामने रख देते हैं। कहते हैं, देखो बच्चों, मैं आपसे जो चाहता हूँ, आपको जैसा बनाना चाहता हूँ, आपको जैसा देखना चाहता हूँ, मैंने अपना दिल खोल करके आपके सामने रख दिया, अब आपकी मर्जी है, अब आप मेरे इस दिल की कितनी कदर करते हो। तो मुरली का एक एक महावाक्य भगवान का दिल है, दिल की आवाज है। तो मुरली को ध्यान से सुनना, उसको गुनना, उसको धारण करना, उस पर चलना, माना भगवान की दिल को समझना और दिल को पूरी करना। अगर हम मुरली सुनते ही नहीं हैं या सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाती हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के दिल की आवाज़ सुनी पर सुनी अनसुनी कर दी, यही मतलब हुआ ना। पहले तो हमने कहा था, भगवान तुम आओगे तो हम तुमसे ही सुनेंगे, तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। और अब जब वो सुना रहा है तो क्या करना चाहिए? दिल लगा करके, चित्त लगा करके, एकाग्र होकर के, सारे काम छोड़ करके, सब तरफ से ध्यान हटा करके वही सुनना है जो भगवान सुनाता है। तब हम कहेंगे कि ज्ञान के सब्जेक्ट में हमारी पूर्णता है। बाहर का ज्ञान हमें कितना भी हो, वो सब ज्ञान अधूरा है। संपूर्ण ज्ञान वही है जो भगवान सुनाता है। और जो उस ज्ञान की कदर करता है, उसको याद करता है, उसको धारण करता है, तो समझो उसका ये सब्जेक्ट पूरा है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? योग। अब योग के सब्जेक्ट में हमारी तैयारी है, इसकी क्या निशानी है? योग माना क्या? भगवान की याद, सरल शब्दों में। अब ये सब्जेक्ट हमारा तैयार है, इसकी निशानी क्या है? हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी देर चाहें, अपने मन को भगवान की याद में लगा सकें। जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी देर चाहें, अपने मन को भगवान में लगा सकें। जब चाहें, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति हो, दुख सुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, घर बाहर, सफर हो, अनुकूल प्रतिकूल, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमने संकल्प किया और हमारा मन भगवान में लग गया, तब कहेंगे योग के सब्जेक्ट में हम पूर्ण हैं। जब चाहें और जैसे चाहें, जिस संबंध से याद करना चाहें, जिस अनुभूति से याद करना चाहें, उस संबंध से याद कर सकें। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, जैसे भी याद करना चाहें, उसी रूप में उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाए, तब कहेंगे योग के सब्जेक्ट में पूर्ण है। जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी देर चाहें, जितनी देर चाहें, एक घंटा चाहें, दो घंटा चाहें, चार घंटा चाहें, आठ घंटा चाहें, ऐसे नहीं 15 मिनट याद किया और उसके बाद फिर मन उचाट होने लगा, या अमृत वेले याद किया उसके बाद सोचा, सुबह सुबह ही तो याद करना होता है, और फिर सारा दिन अलबेले रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी देर चाहे, भले संकल्प होता है कि सारा दिन बाबा को याद करें, लेकिन संकल्प होते हुए भी सारा दिन जैसा चार्ट बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ? योग के सब्जेक्ट में अभी कमी है, निरंतर याद की कमी है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे बीच बीच में हर घंटे में एक मिनट अशरीरी हो जाओ। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, वाणी से परे जाने का अभ्यास करो। लौकिक दुनिया के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक घंटे में एक गिलास पानी पिए तो कभी बीमार नहीं होगा, और कई लोग ऐसा करते भी हैं, अभ्यास डाल लेते हैं। तो जैसे हर घंटे में एक गिलास पानी पीना शरीर के लिए लाभदायक है, इसी तरह से हर घंटे एक मिनट बाबा को याद करना आत्मा के लिए लाभदायक है। जो हर घंटे एक मिनट बाबा को याद करेगा, उसके आगे कभी कोई परिस्थिति या समस्या नहीं आएगी। जैसे एक गिलास पानी पीने वाले को बीमारी नहीं आएगी, ऐसे ही एक मिनट अशरीरी बनने का जो अभ्यास करेगा, उसको कोई परिस्थिति, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि एक मिनट के अभ्यास का जो फल है वो पूरे घंटे पर छाया रहता है, और फिर हम एक मिनट अशरीरी हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा सारा दिन ही ईश्वरीय स्मृति में जाएगा। तो ये है योग के सब्जेक्ट की पूर्णता। और धारणा के सब्जेक्ट की पूर्णता क्या है? बाबा कहते हैं, बच्चे जो ईश्वरीय गुण हैं वो संगम युग का आपका वर्षा है। पिता के पास जो भी कुछ होता है बच्चा उसका उत्तराधिकारी होता है। तो हमारे पिता के पास जितने भी गुण हैं, ऐसे तो हम कहते हैं ना सात मुख्य गुण हैं, लेकिन उन सातों को आपस में मिलाओ तो और बहुत सारे गुण बन जाते हैं। तो बाबा जिन गुणों का सागर है, हम बच्चे उन गुणों का स्वरूप या उन गुणों के मास्टर हैं। अब गुण की परख कब होती है? जैसे कोई व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के साथ शांति से बात कर रहा है, सामने वाला भी शांति से बात कर रहा है, वो भी शांति से बात कर रहा है, दोनों ही शांत। अचानक सामने वाले ने जोर से बोला, चिड़चिड़ा के बोला या क्रोध में बोला, और इस व्यक्ति ने भी उसका जवाब क्रोध में, अशांति में और चिड़चिड़ेपन में दिया। हम इसको पूछते हैं, भाई आपने क्रोध क्यों किया? तो कहता है, देखो मैं तो बिल्कुल शांत था, लेकिन इसने क्रोध किया तो मेरे को भी क्रोध आ गया। पर शांति के गुण का मतलब क्या है? शांति के गुण का मतलब ये तो नहीं है कि चारों तरफ शांति हो और उसमें आप भी शांत हैं तो आपको कहा जाएगा हाँ भैया बहुत शांत। शांत किसको कहा जाता है? चारों तरफ अशांति हो, लोग क्रोध करते हो, चिड़चिड़ाते हो, अनुकूल ना हो, लेकिन तब भी हम शांत रहें, तब कहेंगे ना हाँ भाई इसमें बहुत शांति है। लोग शांत थे तो हम शांत हो गए, लोगों ने क्रोध किया तो हमने क्रोध कर लिया, तो ये तो शांति की परिभाषा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कैसी भी परिस्थिति और कैसा भी वातावरण हो, लेकिन आप अपने शांति के गुण को बनाए रखो, तब कहेंगे हम धारणा के सब्जेक्ट में पूर्ण हैं। जैसे कहते हैं कि एक बार एक राजा ने शांति के ऊपर कुछ कलाकारों को चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। बहुत सारे कलाकार चित्र बना करके लाए, शांति के सुंदर सुंदर दृश्य निर्मित किए उन्होंने चित्रों में। आखिरी में दो चित्र राजा ने सेलेक्ट किए और उन दोनों में से भी एक को इनाम देना था। तो उन दो चित्रों के ऊपर अपने दरबारियों से राजा ने सलाह मशविरा की। एक चित्र था जिसमें सब कुछ शांत था, प्रकृति भी शांत थी, पेड़ भी शांत था, नदी भी शांति से बह रही थी, आसपास के लोग भी अपने घरों के काम शांति से कर रहे थे, वातावरण शांत था। उसमें जो भी कुछ दिखाया गया था वो सब कुछ शांति में दिखाया गया था। और जो दूसरा चित्र था उसमें दिखाया कि आसमान में बहुत तूफानी बादल, बहुत गड़गड़ाहट, बहुत तेज आंधी, पेड़ हिल रही है, नदी में भी उफान है, लोग अपने घरों में भय के मारे घुसे हुए हैं, चारों तरफ पत्ते उड़ रहे हैं, डालियां खड़खड़ा रही हैं, और ऐसे में नदी के किनारे एक छोटे से पेड़ की एक शाखा पर एक घोंसला झूल रहा है और उस घोंसले में एक चिड़िया शांति से बैठी है। तो जब दरबारियों से सलाह मशविरा की तो कौन से चित्र को राजा ने और दरबारियों ने इनाम के योग्य समझा होगा? एक चित्र जिसमें सब कुछ शांति शांत है और दूसरा चित्र जिसमें सब कुछ उफन रहा है और उसमें एक चिड़िया अपने घोंसले में शांति से बैठी है, किसको इनाम मिलेगा शांति का? दूसरे चित्र को, क्योंकि वो अशांति के बीच में भी शांत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, धारणा की परीक्षा तब होती है जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं। जब हम अशांत के बीच में शांत रहते हैं, झूठ बोलने वालों के बीच में सच्चे रहते हैं, बेईमानों के बीच में ईमानदार रहती हैं, दुखी लोगों के बीच में रहते हुए भी सुख स्वरूप रहते हैं, नफरत करने वालों के बीच में भी प्रेम स्वरूप बन करके रहती हैं, तब हमारा गायन पूजन और तब हमारी महिमा होती है, तब दूसरे लोगों के दिलों को हम बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो विपरीत व्यवहार करता है, वास्तव में वो केवल निमित्त मात्र होता है, वो असली दोषी नहीं होता है। जैसे लौकिक दुनिया में एक व्यक्ति जब अपराध करता है तो उस अपराधी को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, जज उसके ऊपर उसके मुकदमे की सुनवाई करता है, वकील उसका मुकदमा लड़ते हैं, जज उसको जेल की सजा देता है और जेल के जो सिपाही होते हैं वो उसको हथकड़ी लगा करके जेल में बंद करते हैं। कितने सारे लोग उस आदमी को सजा देने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस आदमी से अगर आप पूछें कि भाई किसी ने आपको पकड़ा, किसी ने आपको जेल में डाला, किसी ने आपको सजा सुनाई, ये सारे लोग खराब है ना, आपके दुश्मन है ना, तो वो क्या बोलेगा? कहेगा नहीं, ये सब बहुत अच्छे हैं और इनमें से मेरा कोई शत्रु नहीं है। फिर उसको पूछा जाए तो भाई कौन है तुम्हारा शत्रु, तो वो उस व्यक्ति को याद करेगा जिस व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ हो। अब वो ये जानता है कि झगड़े का कारण वो व्यक्ति है और जिन्होंने मुझे सजा सुनाई या जेल में डाला वो तो निमित्त मात्र हैं, वो दोषी थोड़े हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा विरोधी है, अब ये किस कर्म का फल है? तो उस कर्म को याद करेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी नफरत नहीं होगी, शुभ भावना अपने आप प्रकट होगी। ओम शांति।